लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज पुण्य शुक्रवार है। मानव जाति को पाप की जंजीर एवं बुराई की दास्ता से मुक्त करने के लिए यीशु ख्रिस्त द्वारा अर्पित आत्म बलिदान का स्मृति दिवस। यह एक ऐसा दिन है जब ईसा मसीह ने अपने भक्तों के लिए आत्म बलिदान कर निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने विरोध एवं यातनाएं सहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो लीजिए, प्रस्तुत है पुण्य शुक्रवार या गुड फ्राइडे पर एक चिंतन, जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर अनुग्रह मिंज एवं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलीसिया की पूजन पद्धति कैलेंडर में गुड फ्राइडे या पुण्य शुक्रवार एक अति महत्वपूर्ण दिवस है। यीशु ने इसी दिन ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए दुनिया को बचाने के लिए स्वेच्छा से अपना बलिदान कर दिया था। इस दिन संपूर्ण विश्व के ख्रिस्त अनुयायी प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा, गिरफ्तारी, दुख भोग, मृत्यु और दफन का विशेष रूप से स्मरण करते हैं। गुड फ्राइडे के दिन गिरजाघरों में ख्रिस्त्याग अर्पित नहीं की जाती है। इस दिन के पूजन पद्धति की विशेषताएं हैं: पौत्र धर्म ग्रंथ बाइबल से यीशु ख्रिस्त के दुख भोग वृतांत का पाठ, कलीसिया और विश्व के लिए विशेष प्रार्थनाएं, पौत्र क्रूस की आराधना तथा अंत में पौत्र परम प्रसाद का वितरण। तो साथियों, आइए हम भी माता कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु यीशु के दुख भोग पर चिंतन करते हुए उनके प्रेम की गहराई को महसूस करने का प्रयास करें। पुण्य शुक्रवार हमें यीशु के गेतसेमानी बारी में प्राण पीड़ा से लेकर कलवारी पहाड़ पर क्रूसित किए जाने और मार डाले जाने की घटना का विशेष याद दिलाता है। किंतु यीशु को इन घटनाओं से क्यों गुजरना पड़ा और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए हम यीशु के संपूर्ण जीवन पर गौर करें। यीशु ने अपने जीवन द्वारा प्रेम की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को क्षमा करना सिखलाया तथा दयालु बनने का परामर्श दिया। लोग उनकी शिक्षा से मंत्रमुग्ध थे और भीड़ की भीड़ उनके पास आकर उनकी शिक्षा सुनते थे। बहुत सारे लोग उन्हें राजा मानते थे, जिसके कारण उन्होंने उनका जय जयकार भी किया। किंतु पुण्य शुक्रवार हमें स्मरण दिलाता है कि कुछ लोगों ने यीशु का विरोध किया, उनकी शिक्षा को अस्वीकार किया, उन पर अभियोग लगाया तथा उनके लिए मृत्युदंड की मांग की एवं एक घोर अपराधी की तरह उन्हें क्रूस पर ठोंक कर मार डाला। इन दो तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि उन्होंने यीशु के साथ क्यों इस तरह का व्यवहार किया। पहले प्रकार के लोगों ने यीशु के असल रूप को पहचाना था, उन्हें अपना मुक्तिदाता स्वीकारा तथा उनकी शिक्षा को अपने जीवन में स्थान दिया। इस प्रकार उन्होंने यीशु के मिशन अर्थात ईश्वर के राज्य को स्वीकारा। यही कारण था कि उन्होंने उन्हें राजा कहकर उनका जय जयकार भी किया। दूसरी ओर वे लोग हैं जिन्होंने यीशु की शिक्षा को नहीं स्वीकारा तथा उनका विरोध किया। उन्होंने यीशु को मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उनको पूरी तरह समाप्त कर देने की इच्छा से उन पर मृत्युदंड का अभियोग लगाया और जिसके लिए उन्होंने उस समय के सबसे अपमानजनक सजा को चुना। यह मानव की अत्यधिक क्रूरता को प्रकट करता है। ईश्वर के प्रति उनकी अवज्ञा, कठोरता और उनके पतन की स्थिति को दिखलाता है। दुनिया की सृष्टि करते हुए ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को बनाया जो उन्हें अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने यह सोचकर मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया कि वह उनकी अनंत महिमा का सहभागी बने। ईश्वर चाहते थे कि मानव आनंद और शांति से जीवन व्यतीत करे। सृष्टि के अन्य चीजों की देखभाल करते हुए ईश्वर की पौत्र योजना और उनके सुख का भागी बने, पर ईश्वर की यह योजना कायम नहीं रह सकी। मानव ने ईश्वर की योजना भंग कर उनसे अपना नाता तोड़ लिया और इसी के साथ दुनिया में बुराई का प्रवेश हुआ। ईश्वर के साथ बराबरी करने के प्रलोभन ने मनुष्य में डर, लज्जा, क्रोध, लालच और हिंसा की भावना उत्पन्न की। अब उसमें आनंद और शांति नहीं रह गई थी। ईश्वर से संबंध तोड़ने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। व्यक्ति ईश्वर से जितना दूर जाता उतना ही अधिक वह बुराई का गुलाम बनता है। उन बुराइयों के कारण वह बेचैन हो जाता और अपने अंदर की बेचैनी को दूर करने के लिए तरह तरह के गलत उपायों को अपनाता है। कायन बुराई का गुलाम बन चुका था। जब उसने हाबिल को खुश देखा तो वह ईर्ष्या से जलने लगा और उसे मार डाला। इस क्रूर हत्या से उसकी बेचैनी शांत नहीं हुई बल्कि अधिक गहरी हो गई। वह जीवन भर भटकता रहा। इसराइलों ने जब कभी ईश्वर से दूर होकर देवी देवताओं की पूजा की, उन्हें निर्वासित होकर घोर दुख सहना पड़ा। दुश्मनों ने उन पर हमला किया, उनके मंदिर नष्ट कर दिए, उनकी संपत्ति लूट ली और उन्हें गुलाम बनाकर अपने देश ले गए। इस तरह जब कभी मनुष्यों ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, उन्हें अशांति ही मिली। आज सृष्टि का वह रूप नहीं रह गया है जैसा ईश्वर ने उसे बनाया था। उसमें बहुत अधिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। विश्व भर में इसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कहीं बाढ़ के कारण सैकड़ों मर रहे हैं और हजारों विस्थापित हो रहे हैं, तो कहीं सूखे के कारण लोग भूख का सामना कर रहे हैं, कहीं भूकंप के कारण घर के घर ढह रहे हैं, तो कहीं हिमपात के कारण लोगों का जीना दुभर हो गया है। जंगलों में लगने वाली आग से जंगलों के कितने वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं और जलवायु दूषित हो रहे हैं। दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस की महामारी भी प्रकृति को छेड़छाड़ करने का ही परिणाम है, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली है और असंख्य लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक रूप से प्रभावित किया है। इसके कारण भुखमरी, बेरोजगारी, बेईमानी और अराजकता की समस्याओं का बढ़ना गहरी चिंता का विषय बन गया है। विज्ञान में इतनी तरक्की के बावजूद क्यों मनुष्य इन सारी प्राकृतिक आपदाओं को नहीं रोक पा रहा है? मेडिकल जगत में इन आविष्कारों के बाद भी वह लोगों की मृत्यु का रहस्य जानने में असमर्थ है, क्योंकि वह सृष्टि का मालिक नहीं है। वह तो स्वयं एक श्रेष्ठ प्राणी है जिससे ईश्वर ने अपने लिए चुनकर अनुग्रह प्रदान किया है, जबकि उसने ईश्वर के प्रयोजन के विरुद्ध काम किया है। ईश्वर से संबंध तोड़ने के परिणाम को नए व्यवस्थान में हम मानव का ईश्वर के विरुद्ध जाने के झुकाव के चरम में देखते हैं। ईश्वर ने अपनी योजना को पूरी करने के लिए स्वयं अपने पुत्र को भेजा, जो मानव का रूप धारण कर इस दुनिया में आए, सुसमाचार का प्रचार करते हुए सभी लोगों को पश्चाताप करने एवं ईश्वर की ओर लौट आने का निमंत्रण दिया। पिता के साथ मानव का संबंध पुनः स्थापित करने हेतु उन्हें लोगों की अस्वीकृति, विरोध, अपमान एवं निंदा का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें अपराधी घोषित कर मौत की सजा सुनाई। ऐसा प्रतीत हुआ कि अच्छाई पूरी तरह समाप्त कर दी गई और हमेशा के लिए बुराई की जीत हो गई, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इस मृत्यु द्वारा ईश्वर ने संसार की हर बुराई पर विजय पाई है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने सारा मानव इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया है। अच्छाई अब अमर है, वह किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं की जा सकती। ईश्वर के पुत्र यीशु ने यह सिद्ध कर दिया है कि परहित के लिए कष्ट उठाकर तथा क्षमा एवं प्रेम देकर हर कठोर हृदय को बदला जा सकता है। यीशु ख्रिस्त के पद चिन्हों पर चलकर आज भी बहुत सारे लोग दुनिया में शांति और अमन चैन का प्रचार कर रहे हैं।
कोरोना वायरस महामारी का प्रसार जब चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ तो दुनिया के बाकी हिस्से के लोग अधिक चिंतित नहीं थे, लेकिन वायरस का प्रसार बड़ी तेजी से होने लगा और देखते ही देखते दूसरे देश भी इसकी चपेट में आ गए। संक्रमण फैलने के साथ साथ मौतों की संख्या भी शीघ्रता से बढ़ने लगी। संक्रमण रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने लगे। मौत का आतंक इस तरह फैला हुआ था कि सन्नाटेपूर्ण सड़कों पर लगातार एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई पड़ती थी। टेलीविजन पर लगातार कोरोना वायरस के खतरों से संबंधित खबरें चलाई जा रही थी और जब पता चलता था कि अपने ही शहर में किसी को कोरोना वायरस हो गया है तो शरीर सिहर जाता था। हर कोई भयभीत महसूस कर रहा था और बचने का हर संभव प्रयास कर रहा था कि संक्रमित न हो जाए। ऐसी स्थिति में नर्स, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी जान हथेली पर रखकर अस्पतालों में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की सेवा कर रहे थे। डर, चिंता और घबराहट के बावजूद वे दिन रात अपना कर्तव्य निभा रहे थे। फल यह हुआ कि बहुत सारे नर्स और डॉक्टर भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए और अंततः कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मानव प्रेम के कारण सेवा की कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। उसी तरह कई पुरोहितों ने अपनी जान की चिंता किए बिना अस्पताल अथवा घरों में मरीजों से भेंट की, उन्हें दिलासा और अंतिम संस्कार दिया, किंतु बदले में उनमें से कई पुरोहितों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना वायरस से न केवल मरने का डर है बल्कि कई विकट परेशानियां बढ़ गई हैं। कुछ लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे समय में कई भले लोग सामने आए। उन्होंने संकट में पड़े लोगों की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। 51 वर्षीय फादर रॉबर्ट मालगेसिनी उन्हीं में से एक थे। वे उत्तरी इटली के कोमो शहर में लॉकडाउन के दौरान आवासहीन, अप्रवासी एवं शरणार्थी लोगों की मदद कर रहे थे। इसी क्रम में वे 15 सितंबर 2020 को अपनी पल्ली संत रोको गिरजा घर के प्रांगण में थे, तभी एक व्यक्ति ने उन पर हमला किया और उन्हें छुरा भूक कर मार डाला। चाकू से उनकी गर्दन पर कई वार किया जिससे सड़क पर ही उनकी मृत्यु हो गई। फादर का हत्यारा उन्हीं अप्रवासियों में से एक था जिनकी वे मदद किया करते थे। अपनी खराब दिमागी हालत के कारण उस बेघर व्यक्ति ने फादर को मार डाला था। फादर हमेशा के लिए इस दुनिया से गुजर गए, किंतु उनका नाम अमर है। गरीब दुखी लोगों के प्रति उनका प्रेम और उनकी दया बहुतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है।
क्रूस पे कुर्बानी यीशु तिहारी नए करार की, उसी में है मेरी नई जिंदगी।
आज दुनिया में युद्ध, हिंसा, बेईमानी, अन्याय और स्वार्थ का बोलबाला जरूर दिखाई पड़ रहा है, किंतु दुनिया में अब भी बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के जीवन में आशा जगा रहे हैं, खुद कष्ट सहकर दूसरों के लिए शांति एवं भाईचारा लाने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर के सच्चे सेवक यीशु ख्रिस्त ने मानव जाति को सही रास्ता दिखलाया है, जिनके बारे नबी इसाईस भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं,
देखो मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अनंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसकी ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसके सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य प्रकट होगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया, प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है। वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह, और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदी गृह और अदालत ले गए, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है, और वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था, और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई, और वह धनियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा, और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसका भाग महान लोगों के बीच बांटूंगा, और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांटेगा, क्योंकि उसने बहुत से अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया, और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई।
बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी हार निश्चित है, क्योंकि यीशु ने सभी प्रकार की बुराइयों पर विजय पाई है। बुराई फैलाने वाला खुद बुराई का शिकार होता है, जबकि अच्छाई का रास्ता अपनाने वाला ईश्वर की नजरों में महान बन जाता है। उससे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। आइए हम भी यीशु क्रिस्त के पदचिन्हों पर चलते हुए अच्छाई, सच्चाई और भलाई का रास्ता अपनाएं, तथा अपने परिवार, गांव, समाज, देश एवं विश्व में प्रेम एवं शांति के संदेश वाहक बने। इस तरह हमारी गिनती यीशु के समय की उस भीड़ में होगी जिन्होंने यीशु के असल रूप को पहचानते हुए उन्हें अपना मुक्तिदाता स्वीकारा था। इस तरह हम भी यीशु ख्रिस्त के सच्चे शिष्य कहलाएंगे। शुक्रवार के इस कार्यक्रम के साथ आज का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।